कृपावलोकेन हसत् वदनेनोपलम्भितान् तद्रौचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी कृपावलोकेन हसत् वदने पो वदनेनोपलम्भितान् तद्रौचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी कृपावलोकेन हसत् वदनेनोपलम्भितान् तद्रौचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। अनुवाद और तात्पर्य भी श्री प्रभुपाद द्वारा। अत्रि मुनि यह देखकर परम पुलकित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु है, उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने उस समय अपनी आंखें मूंद ली। तात्पर्य, चूंकि तीनों देव हंस रहे थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जा रहा है तीनों देव, और तीनों के तीनों हंस रहे थे, अतः त्रिमुनि समझ गए कि वे उन पर प्रसन्न हैं, उनका जाज्वल्यमान शारीरिक तेज असह्य था। अतः अत्रि ने उस पर अपनी आंखें उस समय अपनी आंखें बंद कर ली। आगे का श्लोक, तो अत्रि मुनि की तपस्या का ये फल है, तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामी, तपस्या की, प्राणायाम समाधि की अवस्था तक, और जब वे पहुंचे तो वह जगदीश्वर को उन्होंने पुकारा था, शरणम तम प्रपद्ये अहम एव जगदीश्वरः, जो भी जगदीश्वर है मुझसे प्रसन्न हो, मेरे समक्ष प्रकट हो, तो जगदीश्वर की कृपा हुई है। और तीन ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से एक परमेश्वर है, धीरे धीरे अब पता चलेगा, अत्रि मुनि को भी और साथ साथ हमको भी, और यही ज्ञान है। अब पता नहीं कौन ईश्वर है, इन तीनों में कौन परमेश्वर है। ज्ञानांजन शलाकया जब होगा अत्रि मुनि का, उसके साथ हम भी ज्ञानी बनेंगे इस भागवत के इस प्रसंग के अध्ययन से। उनको अज्ञान से मुक्त किया जा रहा है, तो उसी के साथ जो श्रोता है या जो भी अध्ययन करता है वो भी अज्ञान से मुक्त होता है। तो वह तीनों ईश्वर प्रकट हुए हैं, तो वह अति रोचसा बहुत तेज ईश्वरों के शरीर, उसमें भी एक परमेश्वर मध्य में है। भगवान के शरीर से तेज कोटि सूर्य सम प्रभा। हम जप के लिए बैठे थे तो एक ही सूर्य का उदय हुआ तो हम लोग कुछ सन्मुख बैठे थे तो हमारे आंखों में कुछ तेज, हमारे आंखों में सूर्य का तेज प्रवेश कर रहा था तो थोड़ा असह्य हो रहा था। हम लोग कुछ स्थान परिवर्तन कर रहे थे, कुछ मुड़ रहे थे इधर से उधर, ताकि एक ही सूर्य का प्रकाश असह्य हो रहा था। तो परमेश्वर जो प्रकट होते हैं तो वहां कितना तेज, कोटि सूर्य सम प्रभा, इस प्रकार वर्णन आता है। कोटि कोटि सूर्य एक ही साथ उदित होंगे तब कितना प्रकाश। और तो इसीलिए निमिल्य मुनि रक्षिणी, इसलिए मुनि ने क्या किया, यात्री मुनि है निमिल्य, उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद की। अक्षिणी मतलब दो नेत्र, अक्षिणी दोनों नेत्र उन्होंने बंद किए। तो आंखें बंद करने के पहले, वैसे जब आंखें खुली ही थी तो दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने देखा था, प्रभु का मुख देखा। कैसा था मुख, हसत हास रहे थे प्रभु, हसत वदनेन प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, उपलम्भितान। और ये सारा कृपावलोकन अवलोकन, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करी आमी बड़ा दुखी। तो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं कि हम बड़े दुखी है हे नित्यानंद प्रभु, तो आप क्या कीजिए, कृपावलोकन करी, कृपा अवलोकन, आपका कृपा कटाक्ष की अभिलाषी हम है। तत्री मुनि की अभिलाषा यह पूर्ण हुई, कृपावलोकन जब हुआ प्रभु का, और क्या चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो और कुछ बचता है फिर प्राप्त करना, कुछ नहीं बचता। जिनको जानने से और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिनके प्राप्ति के उपरांत और कुछ प्राप्ति बचती नहीं। जीवन का साफल्य धन्य है वो त्रिमुनि। कैसे है त्रिमुनि, धन्य है मतलब धनी है, धन्य है धनी है। तो धन्य कैसे, धनी कैसे हो गए, प्रभु प्राप्ति हुई, प्रभु का दर्शन हुआ, धन्य है। राधापंडरनाथ की आप धन्य हो जो राधा पंडरीनाथ का दर्शन जो कर रहे हो। आगे का श्लोक है, चेतस्तत् प्रणवम युञ्जन् नस्तावित संहतांजलिः श्लक्ष्णया सुक्तया वाचा सर्वलोक गरीयसः। अत्रिर्वाच, अब अत्रि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयेश विभज्यमानै माया गुणैरनुयुगम विग्रहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतो अस्मि हम वह तेभ्यक एव भवताम इवो बहुतः। अनुवाद और तात्पर्य, किंतु पहले से अपना हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख देवों की मधुर शब्दों में प्रार्थना की अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने तीनों गुणों को स्वीकार करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं, मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने आप में से किसको बुलाया था। आप सभी तो आए हो, लेकिन इसे मैं एक को ही जगदीश्वर को बुलाने का मेरा हेतु था, तो आप तीनों आपस में चर्चा करो, झगड़ा करो, जो भी है, और जो भी जगदीश्वर है, ईश्वर है, परमेश्वर है, स्पष्ट करो प्रभु कि मैंने किसको बुलाया था। मैंने सभी को तो नहीं बुलाया था, वैसे एक को आना चाहिए था, लेकिन आप सभी आ गए, स्वागत है आपका, लेकिन आप ही कहिए मैंने किसको बुलाया था। तात्पर्य, अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इसके स्वामी ईश्वर कैसे बनते। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद थोड़ा तर्क कर रहे हैं, यदि कोई भवन का निर्माण करता है, आप सुन रहे हो, यदि कोई भवन का निर्माण करता है तो इससे सूचित होता है कि वह इस भवन निर्माण के पहले से विद्यमान है। बात सरल है, स्पष्ट है, जिसने घर बनाया, निवास बनाया, वो घर के पहले था। तो जिसने सृष्टि की रचना की, वो सृष्टिकर्ता भी सृष्टि के पहले होना चाहिए था, थे। इसीलिए गोविंदम आदि पुरुषम, इसलिए वे आदि पुरुष है और उन्हीं से सृष्टि। फलतः ब्रह्मांड के सृष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए, क्यों, सृष्टा कर्ता त्रिगुणातीत होना चाहिए। सृष्टि कैसी है, तीन तीन त्रिगुणमयी है, जैसे अब तो इस तीन गुणों से परे है प्रभु, गुणातीत या ये संसार की सृष्टि किए है भगवान, तो ये एक प्रकार की सृष्टि हुई भगवान की, जो तीन गुणों की सृष्टि है। तो तो दूसरी सृष्टि है, जिस सृष्टि में भगवान रहते हैं वो अलौकिक सृष्टि है, गुणातीत सृष्टि है। तो उस सृष्टि के भी कर्ता, उस सृष्टि में स्थित रहने वाले भगवान भी कैसे होने चाहिए फिर? यस, गुणातीत विशुद्ध सत्व। अगर कोई समझ सकता है विशुद्ध सत्व, गुणातीत तो समझ ही रहे आप, गुणातीत चल रहा है, गुणों के अतीत। विशुद्ध मतलब शुद्धिकरण हुआ, इसका शुद्धिकरण करना है। तमगुण को हटाओ, रजगुण को हटाओ, सतुगुण को भी हटा दो, फिर विशुद्ध हुआ, विशुद्ध सत्वम। सत्व भी कैसा? विशुद्ध। तो भगवान गुणातीत है, किंतु ये ज्ञात है कि विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा रजगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष है। अतः अत्रि मुनि ने कहा, बोला ऐसा नहीं, कौन बोलता है? बोला नहीं, खेड़ा ऐसा बोला ऐसा ना, इतना ही खेड़ा ऐसा। अत्रि मुनि ने कहा, वह जगदीश्वर अवश्य ही आपस आप में से ही कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं, अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा कि मैंने किसका आवाहन किया था। कृपया मुझे बताएं कि आप में से कौन जगदीश्वर है। वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशयपूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताएं कि ब्रह्मांड का दिव्य स्वामी कौन है। निसंदेह उनका विश्वास था कि सभी भगवान नहीं हो सकते, बल्कि इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकता है, ऐसा दृढ़ विश्वास था। में से एक होना चाहिए, सभी नहीं हो सकते। तो इन तीनों में से कौन ईश्वर है, परमेश्वर है, इसको जानना को क्या कहते हैं? ज्ञान कहा जाता है। इसको जानने के लिए बहुत देर तो लगती है, लेकिन उसके बिना कोई पर्याय है नहीं। हम लोग फुर्सत निकाल के बैठेंगे ऐसे जानने के लिए, तो फिर जाना भी जा सकता है प्रभु को, और प्रभु की कृपा से ही जानेंगे हम। या जो जान चुके हैं वो साक्षात्कारी महापुरुष आचार्यगण भी हमें समझा सकते हैं, उनसे भी हम सुन के समझ सकते हैं कि वो एक कौन है। मामेकम भगवान ने कहा है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य करना है, मतलब उनको भी हटाना है, उनको भी हटाना है। कितनों को बचाना है? एक को बचाना है, मामेकम, और उनकी शरण में जाना है। ऐसा करते करते नाकी न हुए तत्, ऐसे करते करते बहुनाम जन्मनाम अंते हो जाता है, बहुत जन्म बीत जाते हैं। बीत चुकने पर क्या होता है? जिसको ज्ञान होता है, जो ज्ञानी है, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत और शुभ, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। भगवान ने कहा कितने प्रकार के? चार प्रकार के। और उनको क्या कहा है? सुकृतिन, सुकृतिन, बहुत सुकृतांची जोड़ी मनु न विठल आवड़ी। सुकृत जिन्हें सुकृत किया, जिसने उसको विठल बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विठल, उन भक्तों को जिन्होंने क्या किया है? सुकृत किया है, कुछ अच्छा अच्छा कृत्य किया है। उभे सुकृत दुष्कृते, दो प्रकार के कृत्य होते हैं, सुकृत अच्छा कृत और दुष्कृत बुरा कृत्य। तो जिसने सुकृत किया है तो वो ज्ञानी बनेगा और भगवान को समझेगा, भगवान से प्रेम करेगा। जो ज्ञानी बनेगा, भगवान की शरण में आएगा, भगवान से प्रेम करेगा, तो ज्ञानवान क्या करता है? माम प्रपद्यते, ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आता है। जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो कौन है? मायया अपरित ज्ञाना या कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना, कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना, जो जिनका ज्ञान रित, ज्ञान रहित, या ज्ञान जिनका चोरी हुई, ज्ञान की चोरी हुई, किसने चोरी की? माया ने चोरी की, या काम वासना ने चोरी की जब ज्ञान की, तो ऐसा ज्ञानी ऋतज्ञाना क्या करता है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा जब कह रहा अन्य औरों के पास जा, अन्य देवता मुझे छोड़ के, मैं एक देवता और फिर दूसरे अन्य देवता, भगवान ने कुछ भेद किया है, अन्य देवता आया औरों के पास। अच्छा ना, औरों के पास देखो, बगल के दुकान में जाते हैं, मेरे दुकान में नहीं आते हैं, दुकानदार को अच्छा नहीं लगता ना, क्यों सेठ जी? ग्राहक सब औरों के दुकान में जा रहे, अच्छा नहीं लगता, सबका भला करे। ऐसे भी कुछ सेठ जी है, कोई कहता है तेरा मुंह काला, बुरी नजर से जो देखता है उसका मुंह, तो कोई कहता है उसका भी भला, कोई बुरी नजर से देखता है उसका भी, ऐसे कम होते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो यहां कुछ प्रसन्न नहीं है, नहीं प्रसन्न लग रहे हैं, इसीलिए कहते हैं और जो औरों के पास जो जाते हैं अन्य देवता, उनको अन्य कहा है, अन्य, एक वेजिटेरियन भोजन और फिर नॉन वेजिटेरियन, नॉन मतलब निगेटिव हो गया ना, नॉन, इसे पता चलता है कि उसे भोजन कौन सा होना चाहिए मनुष्य का, वेजिटेरियन, नॉन मतलब नहीं, नहीं जो वेजिटेरियन मतलब नॉन, रेगुलर क्या वेजिटेरियन, नॉन वो नहीं है, निषेध की बात आ गई। तो मैं एक देवता हूं, मेरे पास आना चाहिए ज्ञानवान, माम प्रपद्यते, लेकिन प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कुछ लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं। एक को कहा है ज्ञानवान, जो भगवान के पास आते हैं, देखिए कैसे किन शब्दों में भगवान वर्णन कर रहे हैं, जो ज्ञानवान है मेरी शरण में आता, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और ऋतज्ञाना जो ज्ञान रहित है वो भी प्रपद्यंते, दोनों भी प्रपद्यंते कर रहे हैं। जो ज्ञानी है वो भी शरण में आ रहा है, और जो ऋतज्ञाना ज्ञान रहित जो है वो भी शरण में आ रहा है। लेकिन एक मेरी शरण में आ रहा है, कृष्ण की शरण में आ रहा है, विष्णु की शरण में आ रहा है, और दूसरे जो ऋतज्ञाना है अन्य देवताओं की शरण में आ रहा है। वाह, तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना इस उद्देश्य से हुई है, ताकि वो एकम, वो एक कौन है, ईश्वर एकला कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर तो एक है और वो है कृष्ण और बाकी सब उनके सेवक है। एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह भी भेद किया है। अवतारों में भी अवतारी है और दूसरे अवतार है, कृष्ण कौन है अवतारी है, और बाकी अवतार है, अवतार भी ठीक है, अवतारों की भी हम आराधना कर सकते हैं, करनी चाहिए, और अपने हर एक अपने अपने इष्ट देव होते हैं। तो इष्ट देव तो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराध्यते परम, विष्णु की आराधना ठीक है, विष्णु तत्व की आराधना ठीक है। तो इष्ट देव को चुनना है हमें तो विष्णु तत्वों में से, विष्णु तत्व जो है उसके अंतर्गत जो भगवान के कई सारे नाना अवतार है उसी में से किसी को हम भज सकते हैं, लेकिन मसोबा को नहीं, भैरोबा को नहीं, खंडोबा नहीं, उन सभी का जो बा है विठोबा, भैरोबा खंडोबा मसोबा का जो बा है, बाप है विठोबा, उनको भजना चाहिए। ये भी बा नहीं है, ये भी बा नहीं है, ये भी बाप नहीं है, ये भी बाप नहीं है, उन सब के बापों का जो बाप विठो बाप विठू माउली जो है उनको भजना, ये ज्ञान की बात है। मरना है तो ठीक है, मरना है फिर भजते जाओ, जिस किसी को आंख बंद करके भजो। मतलब मरते जाएंगे फिर जन्म लेते जाएंगे, आजकल हम उनको करें फांसी चढ़ाया जाएगा उनको। जो कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे, विष्णु की शरण में नहीं आएंगे, उनको क्या होगा, उनको फांसी चढ़ाया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। वो फांसी चढ़ाना मतलब क्या है, उनकी बारंबार मृत्यु होगी, जन्म होगा और मृत्यु होगी उनकी, जो वो माम एकम का पता नहीं लगवाते, वो एकम कौन है जिनका पता अत्रि मुनि लगवा रहे हैं, यहां काम अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ लोग धार्मिक तो किस किस्म के बन जाते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते और आगे नहीं बढ़ते। शास्त्र विधि जो शास्त्र प्रमाण है उसको खोजते नहीं है, कहां है, कहां है वो एकम, कहां वो एक कौन है, कहां है, कैसे दिखाई देता है, पता लगवाना होगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन है, इसलिए आचार्य गण है जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं। वो कार्य श्रील प्रभुपाद किए, हमारे कार्य आसान कर दिए, नहीं तो हम लोग यहां नहीं बैठे होते, हम लोग भी शिरडी शिरडी जाते आज फिर, और कहां कहां जाते हैं हम लोग, और ऐसे जाते ही रहते फिर चक्र गोल गोल चक्कर काटते रहते हम लोग। आई एम द ओनली वन, प्रभुपाद ने, मैं अकेला ही हूं इस देश में, भारत में, जो ये मूर्ति पूजा, नॉट सॉरी देवता पूजा, ईश्वर पूजा का विरोध करने वाला मैं अकेला ही हूं। एक समय प्रभुपाद, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ नहीं रहा है, या गौड़ीय वैष्णव ही है और थोड़े कुछ होंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया। तात्पर्य में जब लिखते रहे प्रभुपाद, कृष्ण का बारंबार नाम लेते रहे प्रभुपाद, वो कृष्ण नाम का ग्रंथ भी लिखे प्रभुपाद, भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर आधारित है वो, उसमें कृष्ण कितने बार लिखा, और जब भी कृष्ण लिखा तो क्या लिखा साथ में, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। शुरुआत में एक बार लिखते तो बस पूरा होता, लेकिन हजारों बार एक किताब में, एक ही किताब में कृष्णा, कैसे कृष्णा, सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या परमेश्वर श्री कृष्ण, कृष्ण कॉमास, ऐसे कितने बार, हजारों बार। क्यों ऐसा लिखना पड़ा उनको, स्पष्ट करना चाह रहे थे, जो भ्रमित जो संसार है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक कौन है। मॉरिशस जाओ आप, वहां भी कई सारे मंदिर हैं मॉरिशस में, और सभी मंदिरों को वैसे शिवाला कहते हैं, शिवाला, शिवाला क्यों कहते होंगे, वैसे शिवालय, शिवालय से वो अभी शिवालाई बच गया, शिवालय शिवाला, तो हर शिवाला वहां सैकड़ों शिवाला है। वैसे 200 गांव है मॉरिशस में, कुल कितने गांव है, 200 200 विलेजेस वहां है, तो हर गांव में कई शिवाला है, तो हर शिवाला में सभी वहां है, सारे देवी देवता, हर मंदिर में हर शिवाला में जाओ सब मिलेंगे आपको, सारा सुपर बाजार, बाजार में कई प्रकार के वस्त्र, कई प्रकार के क्या क्या, तो मैं भी कई प्रकार के देवता को वहां उखड़ा किए। इस कहानी केवल, फिर जब वो इस शिवाला उस शिवाला ऐसे शिवाला घूमते 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 जब हरे कृष्ण मंदिर में आते, वहां केवल इस्कान के दो मंदिर है, एक मंदिर में राधा गोलोकानंद है और दूसरे मंदिर में कृष्ण बलराम, और कोई नहीं है। फिर मॉरिशस के लोग, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बाकी सब लोग कहां गए, और मंदिरों में जो इतनी सारी भीड़, सारे देवी देवता, फिर हमारे शिरडी के साई बाबा भी पहुंच गए, और क्या सब पता ही नहीं चलता है। फिर कोई साधारण मनुष्य भी भगवान, उसका भी मूर्ति वहां रख दिया है, कितना अज्ञान देखिए, वो विष्णु कौन पता ही नहीं चला। यस, परमेश्वर जगदीश्वर, वो आदि पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, तो सारे देवता भी और फिर मनुष्य को भी उसमें जोड़ देना, और अधिक अज्ञान हुआ, कुछ सीमा तक देवताओं को भी कुछ प्रकार का ईश्वर समझना, वो भी तो अज्ञान है ही, लेकिन साधारण मनुष्य को भी वही बिठा देना उस पंक्ति में, उस सूची में, ये और भी अज्ञान मूर्खता तो है ही, धर्म से कोई संबंध नहीं, बाबाओं का कोई संबंध नहीं है धर्म, भागवत धर्म से क्या संबंध है, भागवत धर्म में कहां फिट होते हैं ये, इसीलिए फिट नहीं होते, इसीलिए भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। वैसे मोहम्मद ने भी कार्य किया, अच्छा कार्य किया, मोहम्मद मोहम्मद समझ मोहम्मद मोहम्मदन, तो वे भी एक एक को ही मानते हैं। जब वे थे 1400 वर्ष पूर्व तो मिडल ईस्ट में रेगिस्तान में भी कई देवताओं की पूजा भी वहां चलती थी। उनको पता नहीं होगा वो देवता होंगे, लेकिन कुछ 400 या 600 के नाम लेते हैं, ऐसे अलग अलग देवताओं की पूजा वहां होती थी। और उनका जो क्या काबा काबा हाँ, एक मक्का मदीना, लेकिन मक्का में मक्का शहर है और शहर में काबा, वो जो जब जाते हैं जिसकी परिक्रमा करते हैं, एक ब्लॉक है काला, कोई स्टोन कोई आसमान से गिर पड़ा कब पता नहीं, तो वहां पर कई सारे गॉड्स गॉडेसेस देवता ऐसे कई उनकी पूजा करते थे। अंधश्रद्धा से पत्थर की पूजा क्या थी? मतलब मूर्ति की नहीं, कई पत्थर ले लिया उसको, वो वहां भी चलता था, उसको रंग दिया। तो हुआ मोहम्मद ने बहुत कड़ा एक्शन लिया, उसकी सारी वहां महा क्लीन अप कर दिया, वहां की सारी सफाई की उन्होंने, और एक को एक की स्थापना की, अल्लाह की स्थापना, अल्लाह द ग्रेट द ग्रेटेस्ट। ये मोनोथीइज्म ऐसा कुछ चलता है, मोनोथीइज्म पॉलीथीइज्म, मतलब आस्तिक लोगों में भी भेद है। मोनो मतलब एक को मानना, एक मोनो, और पॉली मतलब कई सारे असंख्य। तो मोहम्मद उन्होंने एक ही अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसे है, महान है, अल्लाह महान है। तो जो लहान लहान थे, महान कैसे, जो लहान लहान जो थे उन सबको उन्होंने हटा दिया वहां से। तो एकम है आमेकम शरणम ब्रज, ये तो प्रभुपाद कहा करते थे। सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्म को त्याग दो, फिर क्या हमको धर्म धार्मिक नहीं बनना है? तो कहते मामेकम शरणम ब्रज, करना मतलब धार्मिक बनना, वो धार्मिकता है, वो धर्म है। मामेकम शरणम ब्रज, और इन देवताओं को कोई समस्या नहीं है, वैसे देवता तो जानते हैं कौन कौन है। समस्या हम लोगों की है, गणेश जी को जाके पूछो, वो जानते हैं ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। शिव जी जानते, भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा आराधना करनी है हे पार्वती, अपने पत्नी को बताया उन्होंने, तो आराधना किसकी करनी चाहिए, विष्णु आराध्यते परम मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुर एव न संशयः, ऐसे भी कहा उन्होंने। मुक्ति देने वाले तो विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी कह रहे हैं, और थ्रू आउट भागवतम, पूरे भागवतम में देखिए शिव जी कौन सा स्थान लेते हैं, वो भी भक्ति करते हैं। जब कृष्ण प्रकट हुए तो वो भी आए, स्तुति कर रहे थे, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतस, सब आ गए, स्तुनवंती दिव्यै स्तवै। ये भागवतम में, ये और पुराण में थोड़ी समस्या है, ये स्पष्ट ही है, इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए चुनना ही चाहिए सही पुराण, पुराणानाम इतम इदम तथा, सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? भागवत पुराण। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभु है, शिव है। ऐसी बात अगर हमसे सुनेंगे तो लोगों का आश्चर्य, क्या शिव जी का वैष्णव कह रहे हो? तो हम उनको पूछेंगे, आप भागवत धर्म के हो? आप भागवत धर्म में विश्वास करते हो? हाँ हाँ करते तो है। तो भागवत धर्म का ग्रंथ तो भागवत है, तो कभी स्पर्श भी तो किया आपने उसको, इसको कभी खोल के देखा है? ये वचन भागवत ग्रंथराज भागवतम के है। ऐसा प्रचार नहीं है। भागवत की खूब कथाएं तो होती है इस देश में, लाखों लोग भी आते हैं, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता है। वैष्णवानाम यथा शंभु कोई नहीं कहता, ये किसी का मनोधर्म तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने अपने दिमाग से कोई मंत्र का रचना किया गौड़ीय वैष्णव, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, भागवतम में है। वैष्णवानाम यथा शंभु, देवानाम अच्युतो यथा, देखिए कैसे अलग कर किया जा रहा है। देवाना साभी, सभी देवों में अच्युत श्रेष्ठ है, मतलब बाकी च्युत होते, बाकी गिर सकते हैं, उनका पतन हो सकता है, लेकिन एक देव है उनका पतन कभी नहीं होता है, वो आदि देव अच्युत कहलाते हैं। देवानाम अच्युतो यथा निम्नगानाम यथा गंगा, पुराणानाम इदम तथा, यथा तथा ऐसा है, जैसे सभी वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव शंभु है, सभी नदियों में पवित्र नदी गंगा है, सभी देवों में श्रेष्ठ देव आदि देव अच्युत है, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भाग इदम, मतलब दिस, ये ऐसा अर्थ, इदम इदम इसकी ओर संकेत कर दे, इदम दिस वन, ये इदम पुराणानाम इदम तथा, जैसे ये उसमें ये श्रेष्ठ है, नदियों में ये श्रेष्ठ है, देवों में ये देव श्रेष्ठ है, वैष्णव में ये वैष्णव श्रेष्ठ है, तो सभी पुराणों में ये पुराण श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। ऐसी स्थापना भागवतम में ही की हुई है, भागवत का महात्म्य भागवत में समझाया है, और जिन्होंने लिखा है लेखक ही स्वयं कह रहे हैं, जिन्होंने और पुराण लिखे और फिर उन्होंने भागवत पुराण भी लिखा, तो तुलनात्मक दृष्टि से वो कह रहे सभी पुराणों में उड़सर उड़सर कुंबस। तो वह शिव जी को कोई समस्या नहीं है, शिव जी स्वयं ही आराधना करते हैं, शंकरसन की आराधना करते, शंकरसन उनका जप करते हैं। देखा आपने चित्र, शिव जी का फोटोग्राफ देखा, जप कर रहे ध्यान अवस्था में, आराधना कर रहे हो, तो ये शिव जी हो गए। फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या करते हैं? उन्हें यज्ञ करते हैं और क्या करते हैं? गोविंदा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी कहते हैं। ये रचना किसकी है? ब्रह्मा की। उन्होंने क्या कहा? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ईश्वरः परमः कृष्णा भी कहा, सभी ईश्वरों में परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। ठीक है ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। हम कब कहते कि ईश्वर नहीं है? ईश्वर है, कई सारे ईश्वर है, लेकिन ईश्वर परमः परमेश्वर तो कृष्ण या विष्णु है या विठल है। और चतुर्मुखी ब्रह्मा अपने चारों मुखों से क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा अपने चारों मुखों से कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहते हैं, और शिव जी अपने पंचमुखी, शिव एक उनका रूप है पांच मुख वाला, पांच मुख है तो आंखें कितनी है? 15, किसी ने कह दिया त्रिनयनी है ना, तीसरा आंख कभी कभी खोल देते हैं, और काम का भस्म, काम देव की राख बनाई उन्होंने तेज से। उनके समक्ष काम काम नहीं करता, काम का कुछ चलता नहीं। तो हुआ तो इस प्रकार ब्रह्मा शिव, और पहले थे कौन? वैसे पहले सृष्टि बनने के पहले विष्णु तो थे, वही तो एक होने चाहिए। प्रभुपाद है सृष्टि के पहले न तो शिव थे न तो ब्रह्मा थे, कौन थे? विष्णु थे। कौन से विष्णु थे? तीनों थे, लेकिन इस ब्रह्मांड में कौन से थे? कौन थे? गर्भदक्ष विष्णु थे, उनके नाभि से पहले थे विष्णु, उन्होंने जन्म दिया, पहले जीवात्मा का जन्म हुआ वो है ब्रह्मा। स्वयंभू नारदः शंभू, तो विष्णु ने जन्म दिया, विष्णु ने सृष्टि की। यस, कोई सृष्टि तो पहले ही, ब्रह्मा के पहले ही सृष्टि बन चुकी थी कुछ सृष्टि। और फिर ब्रह्मा जब हुए तो ब्रह्मा के अलग अलग पुत्र हुए सृष्टि के प्रारंभ में, चार कुमार ब्रह्मा के पुत्र है, नारद आदि ये मुनि, कई सारे मुनि ब्रह्मा के पुत्र है, मानस पुत्र है। तो सृष्टि की रचना भी उन्होंने की, सारे घर बनाए, सारा हाउसिंग कॉलोनी तैयार हो गई, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स रेडी, लेकिन वहां रहने के लिए कोई नहीं था। तो ब्रह्मा जी अब चाह रहे थे कि ये चार कुमार अपने पुत्र है वो सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, सारे घर भरेंगे। सृष्टि करके तो रखिए, लेकिन वहां रहेगा कौन? तो चार कुमारों से नेचुरल, सारे माता पिता चाहते ही हैं अपना पुत्र क्या करे, शादीशुदा हो, फिर खुश हो जाते हैं। ब्रह्मचारी होते हैं तो दुखी होते हैं। ब्रह्मचारी है कोई सदाचारी हो गया तो दुखी, शादी बर्बादी के लिए तैयार है तो पेरेंट्स सुखी। जमाना कुछ बदल गया। ऐसे वैष्णव गृहस्थ बन सकता है, वो बात, वो भी सदाचार, फिर अच्छा लगा भी, कुछ गृहस्थों को अच्छा लगा। या तो गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम बना लिया तो अच्छा है सदाचार, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो चाहते नहीं, वैसा भी चाहते नहीं फिर कई सारे पेरेंट्स। हुआ तो ब्रह्मा भी कोई अपवाद नहीं थे, पेरेंट्स तो थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी इच्छा व्यक्त की, चार कुमार क्या करे अभी, शादीशुदा होके उत्पत्ति करे, सर घर भर दे, बाल बच्चों से अष्टपुत्र सौभाग्यवती और क्या क्या, 80 पुत्र, 800 पुत्र, 8 लाख पुत्र सौभाग्यवती। शुरुआत में तो काफी प्रोडक्शन थोड़ा, क्योंकि होलसेल सब खाली घर थे तो भरने थे, तो चार कुमारों ने इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे कार्य में मत फंसाइए, हम तो जैसे भी है हम प्रसन्न हैं, चेंज अब आश्रम वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो प्रसन्न हैं, प्लीज फादर आई बेग, क्षमा भिक्षा मांगता हूं, मुझे ब्रह्मचारी रहने दो। तो ब्रह्मा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, मेरे ही पुत्र और मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो ब्रह्मा बड़े क्रोधित हुए और ब्रह्मा का क्रोध उनके भाल से निकल आया, उसी के साथ एक पुत्र का और एक अपत्य का निर्माण या जन्म होता है, और वो थे रुद्र, वो थे शिव। जिस प्रकार से वो रोए रुद्र, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। ये रुद्र जो नाम है उनके रोने का वर्णन उसमें है। तो इस प्रकार उत्पत्ति बताई है, विष्णु ब्रह्मा शिव। तो भृगु मुनि जब गए थे, भृगु भी भृगु ब्रह्मा के पुत्र है, वो परीक्षा करने जब गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा, इसमें से कौन श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा के पास गए तो हे पुत्र, ब्रह्मा ने क्या उसको पुत्र के रूप में संबोधित किया, हे पुत्र, तो उस पुत्र ने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया, पुत्र ने क्या किया, वो सीधे बैठ गया। कैसे बैठ गया, अपने पिता की ओर पीठ करके बैठ गया, पिता की ओर उसने पीठ की, मुख नहीं किया, पीठ, पिता पिताजी पीछे बैठे वो उनके सामने बैठ गया, उनकी ओर पीठ करके। तो यह पुत्र और पिता का, तो भृगु के पिता ब्रह्मा। फिर भृगु जब गए कैलाश गए तो शिव जी को मिलते हैं, तो उन्होंने क्या संबोधित किया, भ्राता, दोनों भाई भाई हो गए, शिव जी और भृगु मुनि भाई भाई, दोनों भी ब्रह्मा के पुत्र, तो दोनों ने भाई भाई मतलब इक्वल है, तो दोनों में आलिंगन गले लगाना था, लेकिन भृगु मुनि ने कहा नहीं 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 भाई, थोड़े पहले स्नान करके आ जाना, उनके शरीर में कुछ सारी राख लगी थी, स्मशान भूमि में वैराग्य विद्या के ये मूर्तिमान, शिव जी में कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त, वैराग्य की मूर्ति है शिव जी, क्योंकि भक्त बड़े आसक्त होते हैं और विष्णु भगवान तो बड़ा आलीशान, उनका महलों में रहते हैं, लेकिन उनके भक्त कुटिया में रहते हैं, विष्णु महल में रहते हैं, 56 भोग ग्रहण करते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, काफी सेवा चलती है विष्णु की कृष्ण की, उनके सेवक कुटिया में रहते हैं वैराग्य, लेकिन शिव जी स्वयं स्मशान भूमि में रहते हैं, कोई वैरागी है, मुंड माला ही पहनते हैं, लगभग वस्त्र कम ही पहनते हैं, लेकिन उनके जो भगत है वो महलों में रहते हैं, मलबार हिल में रहते हैं बंबई। थोड़ा उल्टा ये उसको भी समझाया है प्रभुपाद कृष्ण बुक में, समझाते ही ऐसे तो हुआ। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो पढ़े हैं समझे हैं उनको कोई समस्या नहीं है, वो समझते एकम वो कौन है, मामेकम कौन है। तो वैकुंठ जाना है मुक्ति और भक्ति प्राप्त करनी है तो विष्णु की सेवा से यह संभव होगा, देवताओं की पूजा से संभव नहीं होगा, और साईं बाबा को तो फिर मारो गोली, नाम नहीं लेना चाहिए। और भी अज्ञान की बात हो गई हो वैसे, फिर इस संसार के लोग तो ईश्वर को मानना और कोई ईश्वर है ये भी वैसे थोड़ी कोई आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या समझते हैं, ईश्वरो अहम, यहां से शुरुआत है। तो मैं ईश्वर नहीं हूं और ही कोई ईश्वर है, अगर कोई मान भी लेता है उसकी प्रोग्रेस हुई, उसने कुछ तरक्की की हुई है। फिर धीरे धीरे उन सभी ईश्वरों में परमेश्वर कौन है वो पता लगवा सकता है, लेकिन जो हुआ मैं ही ईश्वर हूं, मैं बलवान, मैं सुखी, इतना धन मैंने प्राप्त किया है और उतना भी और करूंगा ही, इस शत्रु का मैंने पराभव किया है, इनको भी जीत लूंगा मैं, ये सारी असुरी संपदा है, तो इस असुरी संपदा के परे वाले हैं देवता के पुजारी, ऊंचे हैं और कम से कम औरों को मानते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, स्वयं को ही मानते हैं, उनकी सारी मान्यता अहम कर्ता अहम इति मन्यते। तो ऐसे अज्ञान से भरे हुए इस जगत के मध्य में ये भगवान का मिशन है, आंदोलन है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, जिसकी स्थापना प्रभुपाद किए 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष पूर्व। तो ज्ञान है तो प्रेम भी उत्पन्न होगा, ज्ञान से प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदायते, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त होगा, भगवान के धाम लौटेगा, जाऊ देवाचिया गावा होगा, फिर भगवान के गांव जाएंगे। लेकिन जिनका भगवान का गांव ही पता नहीं है, तो ज्यादातर लोग जाके कहां तक जाएंगे, स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस्कॉन के भक्त स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथों पर करें, क्या हुआ, अगर यहां अगर और जनता बैठी होती तो या उनको आश्चर्य लगता, क्या हुआ क्या हरे कृष्ण वालों को, स्वर्ग नहीं जाना चाहते, तो इतना सा ज्ञान नहीं है वैसे। कितना अज्ञान की कोई सीमा ही नहीं। इसका उनका बच्चा बच्चा जानता है। श्रील प्रभुपाद जब थे तो श्याम सुंदर प्रभु, आपने श्याम सुंदर और मालती, मालती माता जी अभी जीबीसी है इस्कॉन की एक माता जी गवर्निंग बॉडी कमिश्नर, तो उनकी पुत्री थी छोटी सी सरस्वती उसका नाम, 3-4 साल की होगी। कभी कभी मंच पर भी भरी सभा के समक्ष प्रभुपाद पूछा करते थे, ए सरस्वती कम या पूछते, यू नो हु इज कृष्णा, कौन है कृष्णा, कौन है? तो सरस्वती कहते, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये सभी भक्त ताली बजाते थे। तो प्रभु जी, सी नोज, वो जानती, ये बेटी जानती। बड़े बड़े विद्वानों से भी ये अधिक विद्वान है, उम्र से कुछ कम है, लेकिन वो जानती कि भगवान कौन है। कई सारे तो इस अज्ञान से भरे हुए संसार में महाप्रभु की कृपा से ये हरे कृष्ण आंदोलन कार्यरत है। तो हमको मैनेज मैनेज जो करना है, मैनेजमेंट, क्या मैनेज करना है, ये मैनेज करना है, कैसे ज्ञान का भक्ति का प्रचार प्रसार हो, के लिए प्रभुपाद के भागवत, गीता भागवत ग्रंथों का, जो भी अन्य ग्रंथ इसका वितरण हो, उसी के साथ अज्ञान को मिटाने में मदद होगी। पहले लोगों के पास ग्रंथ भी है, फिर आप भी जाके उनकी मदद करो, लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बहुत बड़ा साधन है ज्ञान भक्ति प्रचार का साधन, प्रभुपाद के ग्रंथ है, बुक्स आर द बेसिस। इस पर सेमिनार चलता रहा इसी मंदिर के यही पर। ये मैनेज करना है, कैसे ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं अधिक से अधिक, जिसमें ये सब बातें कही हुई है, लिखी हुई है, जो अक्षर अक्षर हम जो यहां कह रहे हैं, ये सारा प्रभुपाद के ग्रंथों में से है। इसका वितरण बढ़ाना है और कथा कीर्तन प्रवचन भी हम कर ही सकते हैं। ये पंढरपुर धाम, हरे कृष्ण धाम, अब यही कार्य है। ताकि सारा फोकस विठल पर होगा, विठोवा, विठल रुक्मिणी की शरण में आएंगे लोग, आधा इसके शरण में, आधा उसके शरण में, आधा उसके शरण में, और उनकी शरण में जाते 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 फिर थोड़ा कुछ बच जाता है, कुछ बचा है, तो फिर उतना उतनी शरण फिर विठल के चरणों में भी सब बांट देते हैं अपने को। लेकिन करना क्या है, बचाना है स्वयं को, और पूरे के पूरे भगवान की शरण, पता ही नहीं है भगवान कौन, पता नहीं है, सही भगवान बन रहे हैं, कोई चमत्कार दिखाता है तो फिर लोग नमस्कार करते हैं। तो आप सब इसीलिए ग्रंथों का अध्ययन भी करो, से कक्षा में आओ, सुनो, तात्पर्य सुनो, उस पर कोई भाष्य, कोई भक्तों के प्रवचन, प्रश्नोत्तर करो, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, जैसे कौन हमारे राघवेंद्र हर रोज पढ़ता है, परसों मैंने पूछा, पढ़ते हो 2 आवर्स डेली, हर रोज दो घंटे उसकी बिना चैन नहीं है। एक आधा घंटा पढ़ लिया, फिर और एक आधा घंटा, फिर एक घंटा, ऐसा ग्रैंड टोटल दिन में 2 घंटे पढ़ ही लेता है। फिर एक राघवेंद्र है, दूसरे खगेंद्र भी है, आज सुबह ही पढ़ रहे थे, पढ़ते रहता है, पढ़ना चाहिए। नहीं तो किताब तो है, ग्रंथ तो है, प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया लिखा, ग्रंथ बिक्री तो हो रही है, हजारों की लाखों की तादाद में बिक्री तो हो रही है, लेकिन हम उसका स्वयं, चैरिटी बिगिंस एट होम, स्वयं उसको नहीं पढ़ रहे तो हम अज्ञानी रहेंगे। हम लोग अज्ञान तो बना ही रहेगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं प्रभुपाद के ग्रंथ, या कुछ थोड़ा थोड़ा, एक बूंद बूंद ज्ञान, कोई थोड़ा थोड़ा ज्ञान, फिर उसी में फिर बहुनाम जन्मनाम आते और हो ही जाएंगे फिर। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि इसी जन्म में क्या करना है, फिनिश। तो उसके लिए फिर हर रोज पढ़ना होगा, और कोई तो यहां भी हम लोग लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं पंढरपुर इस्कॉन में। अध्यक्ष महोदय अपना आधा दफ्तर प्रभुपाद के ग्रंथों का ग्रंथालय बनेगा, और यहाँ के भक्त पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, और रजिस्टर होगा तो भक्त लिखेंगे इस समय से इस समय तक मैंने पढ़ा, आज इस तारीख को, उसका टोटल होगा स्कोर। तो कितना जल्दी हम लोग अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिल, आंखें खुलेगी हमें, चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य है, गौड़ीय आचार्य है, हमारे शिक्षा गुरु है इस्कॉन के, उनके ग्रंथ आने वाले 10,000 वर्षों तक लॉ बुक्स रहेंगे। धर्म के नियमों को समझना है तो ये ग्रंथ, तो ये भी मैनेज करना है हर मैनेजर को, हर व्यवस्थापक को। स्वयं पढ़ेंगे क्लासेस जैसे प्रभुपाद ने व्यवस्था की है, और अध्ययन अपने अपने मंदिरों में देखिए, आप स्वयं पढ़िए पहले, और उनको देखने दीजिए कि आप पढ़ रहे हो, तो विजिबल, हम लोग सेंटेनियल में विजिबल साधना, छिपके नहीं पढ़ना है। अच्छा कार्य सबके समक्ष करो, बुरा कार्य तो हम लोग छिपके तो करने की कुछ करते रहते हैं, लेकिन अच्छा कार्य कर रहे तो छिपके क्यों, और प्रेरित होंगे, जप करो सबके समक्ष, पढ़ो, फिर चर्चा करो दिन में। केवल प्रैक्टिकल बात ही नहीं करनी है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल बातें तो होती रहती है, ये सेवा कौन करेगा, ये कौन, शॉपिंग कौन करेगा, प्रसाद कौन वितरण करेगा, फूड फॉर लाइफ, ये हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर चलते रहते, लेकिन कुछ कोई तत्व ज्ञान, कोई फिलॉसफी, कोई लीला कथा पर भक्त चर्चा नहीं करते, ये बहुत कम करते हैं। ऐसा भी समय चाहिए, फुर्सत निकालनी चाहिए। गोपियां जब भी मिलती है तो क्या करती है, उनका टॉपिक क्या होता है, कृष्ण के विषय में बोलती है, कोई प्रश्न?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकिंग महाराज गुरु महाराज, मैं गुरु महाराज को धन्यवाद देता हूँ बोलने का मौका दिया। महाराज जी बता रहे थे हम जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो अलीबाग में जहाँ घूमता हूँ, तो जब कीर्तन निकाला गया था तो मुस्लिमों ने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो पहले तो कहते हैं, अज्ञानी मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह को आकार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ है। लेकिन जब मैंने उन्हें मूसा अलैहि सलाम की बात बताई, जैसे मोहम्मद पैगंबर का नाम अथर्ववेद में आता है, तो मूसा अलैहि सलाम इसकी कथा मुझे पता है क्योंकि मैं मुस्लिमों का भी उनके संतों का संग करता रहता हूँ। तो उसने मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह को कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो एक ही है लेकिन देखना चाहता हूँ। और जब अल्लाह प्रकट हुए तो उन्होंने कहा देखने की कोशिश नहीं करना, जैसे कोटि चंद कोटि सूर्य सम प्रभ है ना, तो देखने की कोशिश मत करो, अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत जिद करी और जब अल्लाह प्रकट हुए तो वो अंधे हो गए, तो देख नहीं पाए उनको, वहां का पहाड़ भी जल गया। तो महाराज जी जिस तरह हमें क्लासेस दे रहे हैं और हम भक्तों से क्लासेस सुनेंगे अच्छे शुद्ध भक्तों से, तो हम कानों से भगवान को देखेंगे तो ठीक होगा, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आंखों से शुरू में यहाँ पंडरीनाथ को देखें, पढ़ें और सुने। धन्यवाद महाराज।